ओम शांति। हम सब के बीच हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धे विमला देवी जी उपस्थित हैं। हम सब उनका बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आपकी क्लास का विषय ही है नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप कैसे बने। गीता का 18वां अध्याय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, संपन्नता और संपूर्णता की ही निशानी कि अंत में एक बाबा की स्मृति बस और कुछ भी याद नहीं। और उस पर ही दीदी जी क्लास कराएंगे। आप इंदौर जोन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। आप जोन के अनेकानेक स्थानों पर भट्टियां कराती हैं, क्लासेस कराती हैं। आप अपनी लौकिक पढ़ाई में भी बहुत अग्रणी रही। आपने बीएड करके शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने अपनी सेवाएं दी है और आध्यात्म के क्षेत्र में तो आप बहुत ही अग्रणी रही हुई हैं। कम से कम 50 वर्षों से दीदी जी ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है और मीडिया विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर, साथ ही साथ दीदी के अंदर वक्तव्य की कला बहुत सुंदर है। आप अनेक सेमिनारों में जाकर भाग लेती हैं। आपके अंदर सरलता, सहजता और ज्ञान मंथन की विशेष कला है। ऐसी प्यारी दीदी जो इंदौर जोन के ही जबलपुर कटंगा सेवा केंद्र पर से अपनी सेवाएं दे रही हैं, हम सुनेंगे दीदी से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप कैसे बने। एक बार जोरदार ताली तो बजाएं दीदी के लिए।
ओम शांति। अभी प्यार से सभी ने नहीं बोला ओम शांति। ओम शांति। अब शब्द में प्यार आया है। आज का विषय तो हमारी सरिता बहन ने बता ही दिया है और वैसे भी हम सभी ब्राह्मण वत्स हैं। हम ब्राह्मणों के आध्यात्मिक पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य ही यही है कि सब प्रकार का मोह नष्ट करके स्मृति स्वरूप बन जाना है। शरीर, संबंध, पदार्थ, नाम, मान, शान सबसे उपराम होकर एक निराकार राम की स्मृति में लीन हो जाना है। बस ऐसी स्थिति बनाने में ही जो मोह का जाल है वो मनुष्य को फंसाता है, ऐसी स्थिति बनने नहीं देता है। तो मोह का जाल तो फंसाता ही है, लेकिन घृणा की दीवार भी मोटी दीवार बनकर हमारे पुरुषार्थ में रुकावट भी डालती है। तो राग और द्वेष ये दोनों ही घातक और पातक हैं, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक हैं। दुनिया में हमारा शत्रु कोई नहीं है। हे भाई, किसी का शत्रु है कोई? बाबा के बच्चों का कोई शत्रु होता है? होता है? दुनिया में हमारा शत्रु कोई नहीं है, और शत्रु है तो ये पांच विकार ही हैं। दुनिया में हमारा मित्र कोई नहीं है, अगर मित्र हैं ये सद्गुण है, क्योंकि ये सद्गुण ही हमें स्मृति लब्धा बनाएंगे, स्मृति स्वरूप बनाएंगे। ये सद्गुण ही हमें समय पर काम आएंगे। इसलिए हमें जीवन में लक्ष्य यही रखना है कि हम सद्गुणों से अपने जीवन को श्रृंगारित करते रहें। जहां भी हमें गुण मिले, जिसके जीवन में हम कुछ गुण देखे, विशेषताएं देखे, हम चुपचाप से गुप्त रूप से चोरी कर लें। ये चोरी की तो मना नहीं है ना, ये चोरी तो कर सकते हैं, गुण चोर तो बन सकते हैं, हम उसके जीवन में से गुण को उठा लें, अपने पास रख लें। ऐसे सद्गुण हमें स्मृति स्वरूप बनने में बहुत मदद करेंगे। ये मोह की जो जंजीरें हैं, ये कारावास की जंजीरों से भी ज्यादा कड़ी है। वो जंजीर तो शरीर को बांधती है, लेकिन मोह की जंजीर तो मन को बांध लेती है। इसलिए ये जो मोह जितना मनुष्य को गहराई से मिलाता है, उतना ही बाद में फिर रुलाता भी है। दिखने में जितना ये लुभावना लगता, इसका परिणाम अंत उतना ही डरावना होता है। इसलिए बाबा भी कहते हैं, बच्चे नष्टो मोहा बन जाना है। आज के विषय जो नष्टो मोहा स्मृति लाभदायी विषय है, इस विषय में विषय के दो पक्ष हैं, दो भाग, दो हिस्से हैं। एक है प्रश्न और दूसरा है उसका उत्तर। एक है समस्या, दूसरा उसका है समाधान। नष्टो मोहा यह प्रश्न है, कैसे बने? उसका जवाब है स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा से आप नष्टो मोहा बन जाएंगे। समस्या है, बहुत मुश्किल है नष्टो मोहा बनना, लेकिन उसका समाधान है स्मृति स्वरूप। अगर कोई बच्चे के हाथ में चाकू है या ब्लेड है, हम उसे यदि छीन लेते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? नुकसान भी हो जाएगा। छीनते हैं तो वो हमको देगा भी नहीं, अपना नुकसान करेगा। हम चाहते हैं उसका नुकसान भी ना हो, उसका बचाव भी हो जाए। अब हम कैसे बचाव करेंगे? बच्चे के हाथ में चाकू है या ब्लेड है, अगर हम छीनते नहीं हैं, लेते नहीं हैं, वो अपना नुकसान करेगा। तो हम किस तरीके से उसे उसका नुकसान नहीं होने दे, उसका बचाव करें? क्योंकि प्यार है ना, बच्चे से प्यार तो है, तो बचाव तो करेंगे ही। बचाव किस प्रकार से किया जाए? उसको उससे भी ज्यादा सुंदर चीज उसके सामने रखी जाए, उससे भी ज्यादा आकर्षक चीज उसको दी जाए, उसकी पसंद की चीज दी जाए, तो अपने आप ही उसको छोड़ देगा वो और उसको पकड़ लेगा। ऐसे हमारे बाबा ने भी मीठे बच्चे कहकर, प्यारे बच्चे कहकर, लाडले बच्चे कहकर क्या किया, हमको कहाँ पहुंचा दिया। बाबा ने कहा, बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप बच्चों को, मुझे सबको साथ लेके जाना है। आप भक्ति में बुलाया ना, हे प्रभु आओ, अपने साथ ले जाओ, मुक्ति, जीवन मुक्ति दिला दो। तो बच्चे, मैं आया हूँ, मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, आपको मैं अपने साथ मुक्ति धाम भी ले जाऊंगा, और वहां से फिर तुम बच्चों को जीवन मुक्ति में मुझे भेज देना है। देखो तो कितनी बड़ी बात हमारे सामने रखी, कितनी सुंदर बात रखी, मुक्ति, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति माना स्वर्ग, कौन नहीं चाहेगा स्वर्ग में जाना। बाबा ने अपने आप ये दो चीज हमारे सामने रखी, इतना प्यार से बोल बोल के, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, कड़वों को भी मीठा बना दिया, सारा कड़वापन, विकारों का कड़वापन भी छुड़ा दिया। तो ये जो बाबा का तरीका है हमको नष्टो मोहा बनाने का, तो बाबा भी कहते, बच्चे आपको भी इसी प्रकार से कोई भी वस्तु में, व्यक्ति में, कोई भी पदार्थ में, कहीं भी संबंधों में मोह है, तो बस बाबा को सामने ले आओ कि मुझे बाबा, इनकी तुलना में मुझे बाबा से क्या मिल रहा है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं आपको। एक बार गीत में लाइन आई ने, उस लाइन के आधार पर, इस दुनिया में कोई नहीं ऐसा जिसको हम अपना कहें, आई थिंक गीत में लाइन सुनी थी सभी ने, इस दुनिया में कोई नहीं ऐसा जिसको हम अपना कहें सिर्फ बाबा के सिवा है। एक बार राजा शिकार पर जा रहे थे, अपने मंत्रियों को लिया, सेवकों को लिया, राजा लोग तो शिकार का शौक रखते ही थे, तो पूरी तैयारी हो गई उनकी शिकार के लिए जाने की, वहां रात को रुकना और फिर शिकार करना। रानी ने जिद पकड़ ली कि मुझे भी चलना है। राजा ने सभी ने उसको बहुत समझाया कि शिकार पे जंगल में हम जाते हैं, वहां आप लोग, आपको नहीं जाना है, आपका वहां कोई काम नहीं है, बड़ा वहां का वातावरण ऐसा भयानक होता है, वहां पर आप नहीं चल सकती हैं। लेकिन रानी ने जिद करी कि मुझे तो चलना ही है, मुझे तो चलना ही है, मैं भी तो जानूं आप लोग कैसे शिकार करते हो, शिकार की जगह कैसी होती है। खैर जिद के आगे राजा को हार माननी पड़ी और राजा ने उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लिया। रानी भी चली गई साथ में। जंगल में चले गए, जो स्थान बनाया था जहां से जो मचान मचान बनाते हैं, जैसे भी तैयारी करते हैं शिकार करने की, तो वो वैसे तैयारी करी। तो अभी शिकार की तैयारी चली रही थी, पूरी नहीं हुई थी, आधी से ज्यादा हो चुकी थी कि रानी को एक दूर से एक हिरण दिखाई दिया। रानी ने कहा ये लोग तो शेर का शिकार करने के लिए आए थे, कि रानी ने हिरण को देख लिया और राजा को कहा कि वो हिरण सामने है, वो उसका शिकार करना है, मैं उसका शिकार देखना चाहती हूं। राजा ने कहा हमको तो शेरों का शिकार करना है। रानी कहा नहीं, पहले इसका करो। ठीक है, उसकी बात मान के राजा थोड़ा दौड़ते हुए गए और तीर चलाया, तीर हिरण को लग गया। अब हिरण भी अपने बचाव के लिए दौड़ता गया, तीर लगा हुआ है, खून बह रहा है, दौड़ता गया दौड़ता गया, दौड़ते 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 राजा भी पीछे दौड़ा, तेज स्पीड से दौड़ा उसको शिकार को लेने के लिए। जाते जाते रास्ते में एक झाड़ी आई, वो हिरण उस झाड़ी के अंदर छिप गया, अपने को उसने छिपा लिया। राजा भी उसके जो खून के दाग थे, जो जहां जहां खून टपका हुआ था, उसको देखते देखते उस स्थान तक पहुंच गया और देखा कि हिरण यहीं तक आया है, इसके आगे खून के कोई दाग नहीं है। तो राजा ने चारों तरफ, उसके सेवक भी साथ में थे, उन्होंने देखा कि यहीं कहीं छिपा हुआ है, तो हिरण को बाहर निकाला, झाड़ी में छिपा हुआ था। हिरण को बोला, हिरण जैसे आया, राजा तुम मेरा शिकार करने आए हो, मुझे लेने आए हो, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। बोले क्या है तुम्हारा प्रश्न? मेरा प्रश्न ये है कि देखो आप यहां तक कैसे पहुंचे हैं, आप मैं यहां छिप गया था परंतु फिर भी तुम यहां तक कैसे पहुंचे? बोले तुम्हारे शरीर से जो निकला हुआ खून था ना, उसको देखते देखते मैं यहां तक पहुंचा हूं। बोले इससे कुछ समझा आपने? इस बात से कुछ आपको ज्ञान समझ में आया? बोले क्या समझ में, समझने की बात है इसमें? बोले समझने की बात यह है, जब मेरा अपना खून मेरा साथी नहीं बना, मेरा खून ही मेरे मौत का कारण बना, तो वो रानी जो एक पराई है, जिसके कहने से आपने एक पाप किया है, एक हिंसा की है, शिकार किया है, वो आपके कब साथी बनेगी? वो आपके कर्मों की साथी कब बनेगी? जो आपको कर्मों की सजा मिलेगी उसके साथी बनेगी क्या? ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। कहने का भाव ये है, जो कहानी छोटी सी सुनाई, कि दुनिया, इस दुनिया में कोई नहीं ऐसा जिसको हम अपना कहे। मालूम है खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, ये जानते हुए भी, मानते हुए भी हम यहां पर कितना अपने आप को व्यक्तियों के, संबंधों के, पदार्थों के, मोहों के जाल में हम अपने को जकड़ के रखते, टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, प्रभु चिंतन के लिए, कुछ और भी आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने के लिए समय नहीं है। किसी से पूछो समय नहीं है, तो दिन भर आप 24 घंटे क्या करते हैं, सिर्फ अपने वो संबंधी और स्वयं, ये देह और देह के संबंधी, हमारी सारी एनर्जी, सारा धन संपत्ति उनके उसमें ही लग जाती है। तो बाबा भी कहते हैं ये मोह दुख देता है, अशांति देता है, और एक दिन मोह में फंसा व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। ये सब जानते हुए हमने अनुभव कर लिया, अच्छी तरह से अनुभव किया जीवन में रहते हुए जन्म जन्मांतर कि मोह का फल क्या होता है, उसके बावजूद भी हम नष्ट मोह नहीं बन पाते हैं। और यहां देखो बाहर वालों का उदाहरण, और यहां बाबा के बच्चों को देखो, बाबा का कोई भी बच्चा हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, मुख से वो दिल से सच्चे दिल से एक बार कहा मेरा बाबा, जैसे दिल से कहा मेरा बाबा, फिर उस समय आप उसका चेहरा देखो, उसका बोल देखो, उसके हाव भाव देखो, उसकी दृष्टि देखो, उसकी वृत्ति देखो, कैसी बन जाती है, कैसी बन जाती है। मेरा बाबा कहने से, सुबह हम गीत सुन रहे थे ना, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, तो सुनाने वाले जो गीत सुना रहे थे ना, हाँ उनका भी हाव भाव देखा ना हमने, जैसे मेरा बाबा दूसरा ना कोई, अपने आप दृष्टि का परिवर्तन, वृत्ति का परिवर्तन, चेहरे का परिवर्तन हो जाता है। बाबा ने हम बच्चों को ये बात स्पष्ट की है कि हमारे जो मन, मन बुद्धि संस्कार या आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, है ना, तुमने कोर्स में तो पढ़ा है ना ये बात। आत्मा की तीन शक्तियां हैं मन बुद्धि संस्कार। जब कोई हम संकल्प करते हैं, जब हम कोई संकल्प करते हैं, वह संकल्प मन और बुद्धि के द्वारा जब बहुत गहराई में चला जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कई लोग प्रश्न करते हैं वृत्ति क्या चीज होती है। हम कोई भी संकल्प, कोई भी विचार करते हैं, वो हमारा विचार मन और बुद्धि के द्वारा जब बहुत बहुत गहराई में चला जाता है, वो वृत्ति बन जाता है। और जो सी वृत्ति बनती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। और जो वायुमंडल बनता है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है, यहाँ का वायुमंडल कैसा है, यहाँ के वाइब्रेशन कैसे हैं। जो वृत्ति से वाइब्रेशन बना ने, वायुमंडल बना, हर एक आते से ही उसको महसूस होने लगता है। तो इसी प्रकार से जो जन्म जन्मांतर, माना द्वापर से लेकर के अभी तक, ज्ञान तो था नहीं, सत्युग त्रेता वाला जीवन भी पूरा हो चुका था, ते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हर जन्म में जितने जन्म लेते गए इसका परसेंटेज बढ़ता गया, हमारे जीवन में इसका परसेंटेज बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा गहराई में चला गया कि आज मनुष्यों की वृत्ति विकारों की गंदगी से भरी पड़ी है। इतनी ज्यादा विकारों की दलदल में मनुष्य फंसा हुआ है, और कैसे आचरण कर रहा है, कैसे जानवर से भी बदतर ऐसे आचरण कर रहा है, क्योंकि उसको जन्म जन्म, हर जन्म जो जो संबंधी, जो जो परिवार मिला, जो भी मित्र मिले, जैसा भी वायुमंडल मिला, उस अनुसार उसकी वृत्ति, दृष्टि, वृत्ति, कृति बदलती गई। विकारों का परसेंट बढ़ता गया तो दृष्टि, वृत्ति, कृति में भी विकारों का परसेंटेज बढ़ता गया, और आज ये बढ़ते बढ़ते पूर्ण रूप से व्यक्ति दलदल में फंसा, विकारों की दलदल में है, निकलने की इच्छा भी रखता है तो भी निकल नहीं पाता है। तो इसलिए अब एक दूसरा पहलू आता है, चाहते हैं सुख शांति, इच्छा रखते हैं मेरा जीवन सुख शांति से भरपूर बने, मेरा जीवन खुशियों से भर जाए, इच्छा सब रखते हैं। एक तरफ ये इच्छा रखते हैं, दूसरी तरफ विकारों की दलदल में भी फंसते जा रहे हैं। तो भला ये तो दोनों अपोजिट बातें हो गई है ना। इसलिए बाबा ने हमको दूसरा पहलू दिया है, नष्टो मोहा, जो मोह 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 में फंसते गए, व्यक्तियों से मोह, संबंधियों से मोह, अपने आप से मोह, वस्तुओं से मोह, ये मोह का जो जाल हमको फंसाता ही गया, इतना ज्यादा गहराई में चला गया कि आज जब जिसको कहते हैं आप मोह को छोड़ो, काम विकार को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है, तो हमारे लिए मुश्किल है, हम तो नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए कई लोग कईयों को संस्था में जाने के लिए मना करते हैं, अरे वहां मत जाना, वहां तो भाई बहन बना देते हैं, वहां तो ये छुड़वा देते हैं, वहां तो ये छुड़वा देते हैं, क्योंकि उनके लिए इतना मुश्किल हो गया है, वो गंदगी है, वो दुख अशांति का कारण, लेकिन उसकी दलदल में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, उस जाल में इतने ज्यादा फंस चुके हैं, उलझ चुके हैं, उनके लिए उससे बाहर निकलना मुश्किल है। भले उनको लालच दिया जाता है, स्पष्ट बात कही जाती है कि आप जब ये काम क्रोध लोभ मोहंकार को छोड़ेंगे तो जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाएगा, आनंद ही आनंद जीवन में आ जाएगा। फिर भी कहते नहीं, हम तो आनंदित हैं, हमको विकारों के जीवन में आनंद आ रहा है। इसलिए ये जो दूसरा पहलू है, स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा, मोह को नष्ट करें स्मृति लब्धा से। तो वो कौन कौन सी स्मृतियां हैं, जो स्मृतियां हमारे मोह को खत्म करेगी? तो पहली स्मृति प्रभु चिंतन। प्रभु चिंतन, आप हमेशा बाबा के याद में रहने का पुरुषार्थ करके देखो। हम जब कोई भी चीज को देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, वो चीज हमारे अंदर आत्मा में संस्कार के रूप में वृत्ति में प्रिंट हो जाती है, अंदर जाते जाते में क्या वो गहराई में चली जाती है, जाती जाती है। अब गहराई में जब चली जाती है तो उसको निकाला कैसे जाए? तो कहते ना, कांटा कांटे को निकालता है। प्रभु चिंतन, हमारे ये जो बुराइयों का चिंतन चलता है दिन भर, विकारों का चिंतन बुद्धि में है, ये प्रभु चिंतन, ईश्वरी चिंतन हमारे उस चिंतन को खत्म करेगा, उन संकल्पों को खत्म करेगा जो दूषित संकल्प हैं। कहते हैं ना, दही को मथो, दही को मथने से नवनीत निकलता है, नवनीत माने मक्खन। इसी प्रकार से देही को आप मथो, देही को मथने से नवनीति निकलती है, अच्छे अच्छे विचार निकलते हैं, सुंदर सुंदर विचार आते हैं। तो बाबा ने हमको रोज मुरली में, प्रतिदिन 4 पेज की मुरली, 3.5 पेज की मुरली होती है, पूरी मुरली में कितने श्रेष्ठ विचार हमें मिलते हैं, कितनी सुंदर सुंदर बातें हमें सुनने को मिलती है। रोज की मुरली आप देखो, यदि बहुत अटेंशन से, प्यार से और उस भावना श्रद्धा से मुरली सुने तो ये ईश्वर के महावाक्य हैं, ये मेरे कल्याणकारी मेरे पिता की सीख और शिक्षा है, सावधानी है, मेरे पिता की है, मेरे कल्याण के लिए है। यदि इस भाव से हम मुरली को रोज सुनेंगे पढ़ेंगे तब उसमें से वो विचार, वो मक्खन जैसे विचार आपको मिलेंगे, और वो जो मक्खन जैसे विचार है, मथेंगे मुरली को, मथे मनन चिंतन करेंगे तो इतनी पावरफुल चीज आपको मिलेगी जो आपके जीवन को नष्टो मोहा बना के स्मृति लब्धा बनाएगी। इसके साथ साथ में प्रभु चिंतन से हम नष्टो मोहा बने उसके लिए दूसरी बात स्वमान दिए जाते हैं। एक तो प्रभु चिंतन, हम ईश्वरी याद, दिन भर हम कैसे भी हर कर्म करते हुए कोई भी हम कार्य करें, बाबा तो रोज ही कहते हैं ना ईश्वर की याद में करो, हमेशा ईश्वर की याद में रहो, शिव बाबा की याद में रहो, कर्म करते भी याद का कनेक्शन कट ना हो, ये तो रोज हमें सुनने को मिलता है। लेकिन सुनते तो हैं पर प्रैक्टिकल हम कितना करते हैं कि एक एक पल एक एक श्वास मेरा प्रभु चिंतन का ही है, शिव बाबा की याद का ही है। यदि ये अटेंशन आपने दिया, इस भाव से आप मुरली सुनेंगे तो धीरे 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 नष्टो मोहा अपने आप ही होते जाए। जहां आपका बहुत अटैचमेंट, वो अटेंशन ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। दूसरी बात, स्वमान दिए जाते हैं, स्वमान तो बहुत सारे हैं और लिस्ट निकालो, किसी ने मेरे को 108 स्वमान की लिस्ट लाकर एक बार दी थी, मैंने उनको कहा 108 नहीं, इससे भी ज्यादा स्वमान है, स्वमान तो बहुत है, इससे भी ज्यादा ढेर स्वमान है। लेकिन एक हम रोज स्वमान को पकड़े, स्वमान कौन कौन से है मालूम है ना, मैं कौन हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, मैं कौन हूं, विश्व की आधार मूर्त हूं, मैं कौन हूं, विश्व की उद्धार मूर्त हूं, मैं कौन हूं, शिव शक्ति हूं, बहुत सारे ऐसे स्वमान है। अब स्वमान का अर्थ निकालो, मैं विश्व की आधार मूर्त हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, ये स्वमान को जैसे आपने पकड़ा तो आधार, जैसे ही आपने कहा मैं आधार मूर्त हूं, बाबा ने कहा कि बच्चे आप सब विश्व के आधार मूर्त हो, आप हिले तो सब हिलने लग जाएंगे, आप जितने मजबूत बनेंगे सब में वही वाइब्रेशन जाएंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ पर है, मैं आधार मूर्त, मुझ पर कितने लोगों की स्थिति आधारित है, जितने आपके आसपास के हैं वो सब कि आप आधार मूर्त हो। अगर ये बात पक्की रही, इस स्मृति में रही, क्या होता है स्वमान को कई महत्व तो देते हैं, और मैंने कईयों को देखा है स्वमान लिखते रहते हैं डायरी में कॉपी पर, कहते हम रोज है ना एक स्वमान को 100 बार लिखते हैं, कोई कहते हम 50 बार लिखते हैं, तो डायरिया भर ली स्वमान की। मैंने देखा कि इतना स्वमान लिखा पूरी कॉपी भर दी, एक कॉपी दो कॉपी, क्योंकि 108 बार लिखना स्वमान एक ही स्वमान को, तो प्रैक्टिकल में देखा थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, पूरा परिवर्तन नहीं आया। इसलिए स्वमान स्वमान कहना नहीं है, स्वमान स्वमान लिखना नहीं है, उसको स्वरूप में लाना है, उसका अनुभव करना है, उसको फीलिंग में लाना, फील करना है, महसूस करना है। कोई भी एक स्वमान लो, 24 घंटा आपके पास में है, एक स्वमान ले लो, एक स्वमान को दिन भर, चलो एक दिन में भी आप सफल नहीं होते हैं तो एक स्वमान को एक सप्ताह तक चलाओ, कोई भी एक स्वमान, और वो स्वमान को अनुभव करो, उसकी फीलिंग आनी चाहिए। आधार मूर्त जैसी बात ने बताई, कल्याण वाली बात बताई, शिव शक्ति हूं, कहीं मेरे अंदर कोई डर भय तो नहीं है, सचमुच शिव शक्ति हूं कि नहीं हूं, लेकिन छोटी छोटी बातों में डर भी जाते हैं, कभी कभी तो चूहा देख के डर जाते हैं, कॉकरोच देख के डर जाते हैं। मैं शिव शक्ति हूं, इसको प्रैक्टिकल महसूस करो, उसको फीलिंग में लाओ। एक सब मैंने कहा ना, एक दिन में नहीं, एक सप्ताह दो एक स्वमान को। मैं ये बात इसलिए बता रही हूं कि बाबा का ये जो अंतिम मंत्र है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अरे गीता का ज्ञान भी पूरा इसी मंत्र के साथ हुआ था, इसी शिक्षा के साथ हुआ था, और हमारे लिए भी हमारी अंतिम स्थिति यही बननी है। इसलिए ऐसा बनने के लिए ये प्रैक्टिकल करना है। कोई भी सामान लो, सामान को फील करो। जितना जितना सामान आपकी फीलिंग में आता जाएगा, अनुभव में आता जाएगा, आपकी दृष्टि वृत्ति कृति और व्यवहार में दिखाई देगा, आपके बोल में दिखाई देगा वो सामान। मैंने एक मेरी हॉबी कहो चाहे आदत कहो विशेषता कहो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मुझे सबके जिनके मैं सानिध्य में आती हूँ संपर्क में आती हूँ वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि उसमें मैं अपने से ज्यादा कोई विशेषता देखती हूँ, मुझसे ज्यादा वो अच्छी बात उसमें देखती हूँ, मैं उससे सीख लेती हूँ। देखो इसमें मेरे में तो नहीं ऐसी बातें हैं, मेरे में ऐसे होना चाहिए, मैं भी ऐसा ही करूंगी, मैं भी ऐसा ही बनूंगी, मैं इस तरीके से बात करूंगी, मैं भी इस तरीके से बोलूंगी। देखो इसका बोलना कितना अच्छा है, कितना मीठा है, भले बड़ी बात को भी कितने सिंपल सरल मीठे शब्दों में उसको कह दिया, बुरा भी नहीं लगा, चुभा भी नहीं, वो कितना अच्छा है तरीका है ये। तो ये भी आप अपने जीवन में एक गुण ग्राहक बनने का एक तरह से आदत बना लो। तो मैंने कई बार हमारे इस ब्राह्मण परिवार में बहुत कई हमारे वरिष्ठ हैं जिनको महारथी कहते हैं, उनके संपर्क में आने का, उनके साथ कई घंटे बातचीत करने का, रहने का ऐसा मौका आता है। तो मैं देखती हूँ, मैं बहुत बारीकी से नोट करती हूँ कि सचमुच इन्होंने अपने स्थिति के ऊपर कितना अटेंशन रखा है, बोल के ऊपर ना बिल्कुल अव्यक्त आवाज, फरिश्तों जैसी आवाज, फरिश्तों जैसा दबी हुई आवाज में बोलना, ये इतने पास में सुनाई देगा वहां तक भी नहीं। और जैसे बोल रहे हैं तो ऐसा लगा सचमुच फरिश्ता कोई बोल रहा है। मैंने कईयों को, एक को नहीं कईयों को, हमारी जयंती बहन जी जिन्होंने सुबह मुरली सुनाई, हमारे एडिशनल हेड है, आप उनके भी कभी संपर्क में जाओ, पास में 5 मिनट भी 2 मिनट भी बात करेंगे ना, तो लेकिन क्योंकि सचमुच फरिश्ते जैसी आवाज है, फरिश्ते जैसा बोलना, इतना धीरे शांति से धैर्यता से बड़े प्यार से अटेंशन रखा ने, उसको फीलिंग, वो सामान को फीलिंग में लाया ने, प्रैक्टिकल किया ना, दादे को धारणा बन गई उनकी। कुछ समय पहले हमारे जबलपुर में बाबा का एक नया घर बना, उसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन में ओआरसी से हमारी आशा बहन जी आई थी, तो 2 दिन हमारे पास में रही। 2 दिन मैंने उनको बहुत उनके साथ साथ ही रहने का मौका मिला, क्योंकि हमारे निमंत्रण पर ही आई थी वो, तो साथ साथ रहना, साथ साथ भोजन करना, सब बातों में मैंने देखा उनका जो हाव भाव, उनका जो भाषा है, उनकी जो बोलने का तरीका है, इतना इतना बिल्कुल शांति से धैर्यता से, तो कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, ये जो सिद्धांत है ना, ये भी तो समान है। ये मैंने सचमुच प्रैक्टिकल अनुभव किया और मैंने भी सीखा, क्योंकि कभी कभी शिक्षा सावधानी थोड़ा बहनों को देनी पड़ती, छोटी बहनों को गलतियां करती हैं तो थोड़ी सी हल्के से आवाज ऊंची हो जाती है। मैंने सीख लिया, मैं कर नहीं, देखो मेरे में ये कमी थी, आज मैंने इनके जीवन में देखी, मुझे भी यही तरीके से बात करना चाहिए, मुझे ये सीख लेना चाहिए। ये तो हम संपूर्ण कैसे बनेंगे, हम नष्टो मोह स्मृति लब्धा कैसे बनेंगे। तो मैंने देखा ये कि हमारी जैसे महारथी है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ उनका है और बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है वो, उनका सचमुच प्रैक्टिकल जीवन टेम्पररी भी नहीं, कुछ समय का भी नहीं, हमेशा का, किसी भी समय कहीं भी किसी भी स्थान पर आप उनको देख लो, उनका वही लहजा, उनका वही तौर तरीका। तो ये क्या है, हमारा स्वमान। हम स्वमान की बात तो बहुत सुनते हैं, बहुत करते भी हैं, लेकिन वो सामान हमारे फीलिंग में आना चाहिए। कई बार तो लिखना लिखना लिखना, हम लिख रहे सामान लिख रहे, मैंने देखा नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, इतना सा परिवर्तन होगा बस। आप ये लक्ष्य रखो, सामान को दिन भर स्मृति मिलाओ, आज का मेरा ये सामान, या मैंने एक सप्ताह का ये सामान लिया है, अपने आप को याद दिलाओ। जैसे कोई व्रत लिया जाता है ना, तो उनको याद रहता आज मुझे भोजन नहीं करना है, आज मुझे अनाज वाली चीज नहीं खानी है, उनको याद रहता है, भूलते नहीं है वो। मैंने भी ये सामान का व्रत लिया है, ये सामान मुझे हमेशा याद रखना है, मेरे बोल में है, मेरे देखने में है, मेरे सुनने में है, मेरे बातचीत करने में, चेहरे पे चलन में है। तो जब ये सामान की चीज आती है प्रैक्टिकल, हम इतना अटेंशन रखते हैं, तो हमारा फेस भी वैसा ही बन जाता है, फेस भी वैसा ही बन जाता है, दृष्टि भी वैसी हो जाती है। आप भी अनुभव करना, अनुभव करके देखना, यदि आपको ये लक्ष्य रखा है जीवन का, ये बनने का, तो आप एक सामान को एक सप्ताह तक चला, एक दिन तो थोड़ा कम पड़ जाता है, एक सप्ताह रखो, कोई बात नहीं, एक महीने में चार सामान के स्वरूप तो बन जाएंगे आप, एक महीने में चार सामान के स्वरूप, तो छह महीने में कितने बन जाएंगे, फिर एक साल में कितने बन जाएंगे, संपूर्ण स्थिति करीब नहीं आ जाएगी, संपूर्ण स्थिति के हम पास में पहुंच जाएंगे। तो ये सामान की जो बात है, ये बोलने की लिखने की नहीं है, इसको अनुभव करने की है, ये अनुभव करना है। एक एक सामान लेते जाओ, एक एक सामान, जैसे मान लो मैं विश्व सेवाधारी हूं, अब विश्व सेवाधारी ये सामान है, फिर देखो ये विश्व सेवा, तो सेवाधारी होता कैसा है, मैं अपने आप को विश्व सेवाधारी समझती हूं, ये मेरा सामान मैंने लिया है, मैं अपने को विश्व सेवाधारी समझू, उसी समय आपको स्ट्राइक हो अंदर कि सेवाधारी के लक्षण क्या क्या होते हैं। सेवा करने वाला विनम्र होता है, सेवक हमेशा विनम्र, अपने घरों में देखें जो मालिक और नौकर होते हैं, जो सेवाधारी होते हैं, उनके सेवक कितने विनम्र होते हैं, ऐसे झुक के बात करते हैं, जी जी साहब, जी साहब, धीरे बोलेंगे, एक शब्द बोलेंगे बस। मैं विश्व सेवाधारी विनम्र होता है, सेवाधारी जी हाँ जी हजूर, इसके सिवा कुछ नहीं कहता है, सेवाधारी अपनी सेवा की मस्ती में मस्त रहता है, लगन में मगन रहता है, वो जो सेवा करे उस लगन में मगन है बिल्कुल, आप पास से चले जाए पता भी नहीं चलेगा, ये सेवाधारी के लक्षण होते हैं। मैं कहती हूं मैं विश्व सेवाधारी हूं, क्या ये सेवा के सारे लक्षण, सेवाधारी के सारे लक्षण मेरे अंदर प्रैक्टिकल में है, मेरे बोल में है, मेरे हाव भाव में है, मेरे कर्म में है, मेरे दृष्टि में है, मेरे चेहरे पे है। ऐसे स्थिति बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, मेहनत कुछ नहीं है, सिर्फ अटेंशन, बस अटेंशन देना, कुछ नहीं करना है, अटेंशन रखना है। दिन भर जो सामान लिया है उसको बार बार दोहराते रहो, दोहराते रहो, वो मैंने लिया है सामान, तो मुझे वैसे ही चलना है, वैसा ही बनना है। ये मम्मा को देखा ना, मम्मा कितना कम बोलती थी, जी बाबा, हाँ जी बाबा, बस इससे ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार से ये सामान में रहना, सामान को धारण करना, और ये सामान हमको अपने आप ही स्मृति स्वरूप बनाएंगे, क्योंकि मोह सब चीजों से मोह नष्ट तब होगा जब हम स्मृति लब्धा होंगे, स्मृति स्वरूप बाबा की याद में लीन, दिन भर लीन दिखाई देंगे, अपने सामानों का स्वरूप बनकर के रहेंगे। तो सामान की बात है, इसके बाद तीसरी बात और कौन सी है, स्मृति लब्धा के लिए प्रभु चिंतन बताया, दूसरा सामान बताया, तीसरा है मुरली, मुरली का मनन चिंतन। स्मृति लब्धा बनने के लिए जो भी हम रोज मुरली सुनते हैं, वो मुरली का मनन चिंतन होना चाहिए। मुरली सुनने के तुरंत बाद यदि आपके पास समय है, तो तुरंत आप कमरा बंद करके बैठ जाओ, मुरली का मनन चिंतन करो, पहले आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद फिर आपको नाश्ता करना हो, जो भी करना हो करें। हमारे वासवानी दादा थे एक, इंदौर में, रायपुर से ज्ञान में निकले थे, वो इंदौर में बहुत आते रहते थे, उनका अनुभव बता रही हूं। उनका नियम था, ऐसे तो उम्र थी उनकी, पर उन्होंने ज्ञान को इतनी अच्छी तरह से समझा था, इतनी अच्छी तरह से बाबा के ज्ञान को पकड़ा हुआ था। मुरली सुनते थे, मैंने कहा ना मैं तो सबको बारीकी से देखती रहती हूं कि किसमें क्या विशेषता है, तो मैं देखती थी दादा मुरली के बाद किसी से बात नहीं करते थे, सीधा वो अपने कमरे में जाते थे, दरवाजा बंद करते थे, और आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट भी वो उस मुरली का मनन, बहुत मनन चिंतन कर डायरी में लिखते थे, जो उनको अंदर से चिंतन करके जो उनको नई नई पॉइंट्स आती थी वो डायरी में लिखते जाते थे कि मुरली तो ये है पर मुरली का मनन चिंतन का ये है, दोनों उनका एक पेज यहाँ एक पेज यहाँ होता था। तो एक बार मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा दादा नाश्ता ठंडा होता रहता है, आप इतना देरी से आते हो, तो मुरली के तुरंत बाद आ जाए करो ना आप। तो उन्होंने यही मुझे कहा कि विमला बहन, मैंने एक नियम बनाया अपने जीवन का कि मुरली के बाद में किसी से बात नहीं करता, बात करने के मुरली की पॉइंट उड़ जाती है, बहिर्मुखता में आ जाते हैं। मैं पहले मुरली का चिंतन मनन करूंगा और जो मेरे मन में मुरली के चिंतन मनन की बातें आएगी उसको मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ, वरना कल हो सकता भूल जाऊं मैं कि कल के मुरली का क्या मनन चिंतन किया था, वो मैं डायरी में। फिर दिन भर में जब जब मुझे टाइम मिलता 3-4 बार मैं मुरली के पॉइंट भी पढ़ता हूँ, मनन चिंतन वाले पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करता हूँ। इतना मेरे मन को अच्छा लगा सुनकर के उनका अनुभव, मैं कहा देखो कितना अच्छा पुरुषार्थ है, उनकी उम्र भी इतनी है, 60-70 साल के थे, आज देखो फिर भी इनका कितना अपनी स्थिति को बनाने में ध्यान कितना है, अटेंशन कितना है। ऐसे लोगों के जीवन को हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसकी ऐसी दिनचर्या देखते हैं, हमको सीख लेना चाहिए उनके जीवन से। तो इतनी इसलिए कम वर्षों में ही, अभी तो वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने काफी समय, पर मैं समझती सिर्फ 10 साल ही ज्ञान में चल पाए थे और शरीर छोड़ा, क्योंकि काफी उम्र में ही आए थे ज्ञान में, और 10 साल में उन्होंने अपनी स्थिति इतनी उपराम बना ली थी, क्योंकि देखो उनकी सादा देखो ना पढ़ाई, अपनी स्थिति पर अटेंशन, स्थिति बनाने में अटेंशन। तो स्मृति लब्धा हम बने कैसे, नष्टो मोह तो हो ही जाएंगे, स्मृति लब्धा बन जाएंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ना नष्टो मोह एक समस्या है, नष्टो मोह कैसे बने ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर तो है स्मृति लब्धा, वो समस्या है तो समाधान है स्मृति लब्धा। तो मुरली का मनन चिंतन मम्मा हमेशा कहती थी कि गाय देखो घास खाती है और फिर जुगाली भी करती है तब दूध तैयार होता है, मम्मा कहती थी घास खाएगी तो दूध नहीं तैयार होगा, जब घास का वो जुगाली करेगी उसको पचाएगी तो दूध तैयार होता है। इसी प्रकार से केवल हमने एक नेमी नाथ बन के मुरली सुन ली, घास तो खा लिया आपने पर उसकी जुगाली नहीं हुई ना। मुरली का मनन चिंतन जरूर होना चाहिए, 4 बार पढ़ो मुरली। हमारी प्रकाशमणि दादी जी कितनी बार पढ़ती थी मुरली, जानकी दादी जी कितनी बार मुरली पढ़ती थी, क्यों पढ़ती थी, बार बार आज बाबा ने कहा क्या है, आज बाबा हमसे चाहता क्या है, बाबा की आज हमसे उम्मीदें क्या है, अपेक्षा क्या है। जितनी बार मुरली पढ़ेंगे हमको उसमें नई नई पॉइंट, प्रेरणा देने वाली पॉइंट हमारी याद आती जाएगी। तो इसलिए हमको यदि अपनी स्थिति संपूर्ण बनानी है, फिक्र है अंदर में, लगन है, चिंता है मुझे संपूर्ण बनना है, पता नहीं शरीर कब छूट जाए अचानक, संपूर्ण बने बिना ही शरीर छूट जाए तो ये पुरुषार्थ चालू करो। इस पुरुषार्थ में देखो आपकी रोज की जो दिनचर्या है, आपका कारोबार है, वो भी नहीं छूटेगा, वो तो खैर करना ही है, लेकिन साथ साथ में आपके संपूर्ण बनने की तैयारी भी चलती रहेगी उसके साथ साथ में। तो तो मुरली का मनन चिंतन तीन चीज, पहला क्या बताया था मैंने, हाँ प्रभु चिंतन, दूसरा बताया स्वमान, और तीसरा है ज्ञान का मनन चिंतन। चौथा बाबा ने हम बच्चों को हमारा अनादि आदि स्वरूप की स्मृति दिलाई है। हमें किसी को कुछ नहीं पता था कि परम धाम में हम ज्योति बिंदु के रूप में रहते थे और सतयुग यहाँ भारत में था, देवी देवताएं थे और वो हम ही थे, पहले मालूम था क्या ज्ञान काल में। लेकिन यहां आकर के जब ये सत्य ज्ञान को हमने सुना, स्वयं पिता परमात्मा ने हमें एहसास कराया, हमें स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम ही देवी देवता थे, तुम परम धाम में मेरे पास में थे, मेरे साथ में थे, पर निराकार रूप में ज्योति बिंदु के रूप में थे, शरीर नहीं था वहां पर, मेरे साथ में थे, मैं भी ज्योति बिंदु, तुम भी ज्योति बिंदु। उस शांति धाम में बहुत शांति स्थिति में हम बैठते थे। फिर देखो सतयुग में आए तो ये देवी देवता जिसकी पूजा हो रही है तो हम ही थे, ये तो हमारी मूर्तियां बनी हुई है, हम ऐसे थे, बने कब थे, संगम युग के बने थे। देखा जाए पूजा तो हमारे संगम युग की त्याग तपस्या की हो रही है, पूजा तो सतयुग में कोई त्याग तपस्या तो है ही नहीं। तो बाबा ने हमें हमारा अनादि और आदि स्वरूप जो याद दिलाया है, वो याद दिला मैंने स्मृति में याद दिलाया, उसका हमें स्मृति स्वरूप बनना है, वो भूलना नहीं है। हमारा अनादि स्वरूप कैसा है तो परम धाम में पहुंच जाओ, कुछ समय के लिए पहुंच जाओ परम धाम में, कैसे लाल रंग का प्रकाश है, कैसे हम ज्योति बिंदु श्री बाबा सामने में सामने, कैसे उनकी किरणें मेरे ऊपर आ रही है, कितना आनंद आ रहा है, एकदम शांति धाम, बहुत सुंदर अनुभव होता वहां का। पहुंच जाओ वहां पर, जैसे कहा बाबा ने हमको स्मृति दिलाए, बच्चे तुम्हारा अनादि स्वरूप ये है, पहुंच जाओ वहां पर, आदि स्वरूप तुम्हारा वो हो, मैंने ही तुम्हारा बनाया था, तुमको भेजा था तैयार करके, वो सत्यु को याद करो, वो अपना वर्षा याद करो। हमारा सत्यु कितना सुंदर था, न रोग न शोक न लड़ाई न झगड़ा न किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं वहां पर, कितना सुंदर संपन्न जीवन, कितना सब आपस में प्यार से रहते थे, प्रेम से रहते थे, कोई किसी से नफरत नहीं करता था, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता था, तेरा मेरा चोरी डकैती कुछ होती नहीं थी। इसके बाद ये स्वरूप की स्मृति को आप दोहराते रहो जो बाबा ने याद दिलाया हमको, स्मृति जगाई हमें। इसके बाद हमारे जो बाबा तो गीता का ज्ञान सुना ही रहे हैं, और कहते हैं ना गीता का ज्ञान, गीता नाम क्यों पड़ा, गीतों के आधार पर हमारी मुरली चलती है ना, पहले गीत बजता है फिर मुरली शुरू होती है। बहने भी क्लास कराती, पहले गीत बजता फिर क्लास शुरू होती है, इसलिए उसका नाम गीता पड़ा। तो ये जो गीत है ना, बहुत सुंदर सुंदर गीत है, गीतों के वह शब्द इतने सुंदर होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि शब्दों के अर्थ ही आप निकालते रहो और उसमें मगन रहो, उसका आनंद लो, तो भी आप स्मृति स्वरूप, क्योंकि शब्द सारे बाबा की शिक्षाओं से भरे हुए हैं। मुरली के गीत देखो, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, नई उम्र की कलियां देखो, देख रही दुनिया साज, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, अरे हमारे पे इतनी जिम्मेवारी, सब लोग हमको देख रहे हैं, ये भगवान के बच्चे कहलाते हैं, हे भगवान जैसे ही है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। अभी ज्ञान के गीत भी देखो आप, अभी सुन ही रहे थे हम गीत, कितने मुझे इस गीत की लाइन बहुत अच्छी लगती है, इस दुनिया में कौन ऐसा जिसको हम अपना कहें, कोई नहीं है शिव शिव बाबा के सिवाय, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे ऐसे गीत हमको कितनी सुंदर सुंदर प्रेरणा देते हैं, एकदम स्थिति को कितनी अच्छी बना देते, गीत सुनते रहो, स्थिति बनाते जाओ, वो गीतों के शब्दों को ही अर्थ निकालते जाओ, तो भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। तो हमारी स्मृति लब्ध बनाने गीतों का भी भूमिका है बहुत अच्छी, उसके साथ साथ चित्रों की भी भूमिका है, कहते जैसा चित्र वैसा चरित्र, तो बाबा ने हमको कौन सा चित्र दिया है जो हमेशा अपने सामने रखना है, वो हमारे लक्ष्य का चित्र है, लक्ष्मी नारायण, सामने भी देखो लक्ष्मी नारायण ही है। अपने घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसी जगह रखो, आते जाते ज्यादा से ज्यादा समय आपको चित्र दिखाई दे, चित्र देखते देखते चरित्रवान बन जाएंगे, वैसा चरित्र आ जाएगा हमारे अंदर, हम वैसे ही बन जाएंगे। जो सोचेंगे जो देखेंगे वैसे तो बन जाते हैं ना। तो चित्रों को भी, जिस चित्र से हमको प्रेरणा मिलती है, ये स्लोगन, ऐसे स्लोगनों को पढ़ करके बहुत प्रेरणा मिलती है। घर में कुछ दो चार जगह ऐसे स्लोगन लगा के रखो, वो स्लोगन को भी देख करके बहुत प्रेरणा मिलती है, हमारी स्मृति जागृति के, देखो क्या ये स्लोगन क्या कह रहा है। हमारा बेज तो कह रहा ही, हमारी स्मृति दिलाने वाला ये बीके का बेज, ये ड्रेस तो है ही, ये सफेद ड्रेस पहनी हफ्ते फरिश्तों की ड्रेस है। कहते हैं ना आप लोग, हमारे भाई लोग कई बार कहते, बहन जी आप लोग कभी बाबा की कुछ सेवा के काम से मार्केट में जाना ही पड़ता है, बोले इतने बड़े मार्केट में एक आप ही लोग चमकते हो, चेहरा भी आपका चमकता है, ड्रेस भी आपकी चमकती है। हमारी चमकती हुई ड्रेस में कोई जरा सा इतना सा दाग न लगे, कोई ये न कहे देखो ब्रह्मा कुमारी का बेज लगाया है, ब्रह्मा कुमारी के सफेद ड्रेस पहनी है, और देखो बोल कैसा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कितनी ऊंची आवाज में बोल रहे, गुस्सा कर रहे हैं, ये ड्रेस बदनाम हुई ना हमारी, ये ड्रेस के ऊपर एक दाग लगा ना। ये भी हमारी स्मृति को जगाते, हमको याद दिलाते हैं हम कौन है, हम कौन है, ये याद दिलाते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो नष्ट मोह बनने के लिए है, बाबा अव्यक्त वाणियों में भी हमें बहुत शिक्षा सावधानी देते हैं कि ये जो मेरा शब्द है, ये मेरा शब्द हमें लगाना सिर्फ बाबा के लिए, और मैं शब्द लगा दे ये आत्मा के लिए। लेकिन लग कहाँ जाता है ये शब्द, मैं देह धारी फलाने में, और मेरा मेरा सब, ये मेरा 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 प्रॉपर्टी धन दौलत संबंधी जिनसे मोह है, लग जाता हमारा वहां मेरा। इस संबंध में छोटा सा मैं प्रसंग सुनाती, जल्दी सुनाऊंगी, समय तो हो रहा है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और व्यक्ति वो स्वर्ग के द्वार पे पहुंचा, क्योंकि उसने जीवन में बहुत अच्छे काम किए, स्वर्ग के द्वार पे पहुंचा तो वहां देवदूत खड़े थे, देवदूत ने उनको अंदर जाने के लिए मना कर दिया, रोक दिया। उसको आश्चर्य लगा कि मैं तो स्वर्ग का अधिकारी हूं पूरा, क्योंकि पूरे जीवन मैंने पुण्य काम किए, अच्छे से अच्छे काम किए, सबका भला किया, फिर भी मुझे देवदूत रोक रहा है। तो देवदूत को उन्होंने कहा, भाई देखो मैं तो पूरे जीवन भर मैंने सेवा का काम किया है, पुण्य का काम किया, लोगों की मदद करी है, किसी का दिल नहीं दुखाया है, और आप मेरे को रोक रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। देवदूत ने कहा, भाई ठीक है आपने जो किया वो हिसाब आपका है, पर हमारे स्वर्ग में जाने का हिसाब किताब कोई दूसरा है, वो अलग प्रकार का हिसाब किताब है। तो बोले कौन सा हिसाब, ले उसके नंबर आपको लेने पड़ेंगे। बोले ठीक है बोलो। बोले आप बताओ भाई क्या क्या पुण्य आपने किए हैं, अपने पुण्य का हिसाब बता दो। तो उसने पहले बताया कि सबसे पहला पुण्य तो मैंने ये किया कि मैंने अपने पूरे परिवार का बहुत भला किया, मैंने मेरे परिवार वालों को बहुत सुख दिया, कभी परिवार वालों को मैंने दुख दुख नहीं दिया, परिवार वालों की सबकी इच्छाएं पूरी करी, सबको संतुष्ट रखा, किसी को परिवार में से मेरे से शिकायत नहीं रही। देखो परिवार का मेरे कितना ध्यान रखा, क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी मेरी थी, तो मैंने अपने परिवार का बहुत ध्यान रखा। बोला अच्छा ठीक है एक नंबर। और बता दिया उनको कि देखो स्वर्ग में जाने के लिए आपको 1000 नंबर लेने पड़ेंगे। कितना नंबर? 1000 नंबर। अब ये जो परिवार का उसने इतना ध्यान रखा, सबको संतुष्ट रखा, सबको खुश रखा, सबकी इच्छाएं पूरी करी, किसी को दुख नहीं दिया, सिर्फ एक नंबर मिला। ये तो आपका हिसाब किताब था, ये तो आपका हिसाब किताब था जो आपने चुकाया, एक नंबर। चलो कोई बात नहीं, दूसरे पुण्य भी है मेरे पास में। अभी दूसरा पुण्य बताया कि मैं गवर्नमेंट के साथ ही बड़ा वफादार रहा, अपने देश के प्रति वफादार रहा, जो सिलेक्शन इलेक्शन होता था, चुनाव होता, मैंने ईमानदारी से वोटिंग करी हमेशा, और भी उनका टैक्स मैंने ईमानदारी से चुकाया, कभी भी मैं टैक्स में बेईमानी नहीं करी, अपने सरकार के साथ ही मैं पूरा वफादार ईमानदार रहा। अच्छा ठीक है दो नंबर। कितने नंबर? उसको दो नंबर दिए। बड़ा उसको आश्चर्य लगा कि इतने बड़े बड़े पुण्य कैसे मेरे 3 ही नंबर हुए। चलो वो भी है मेरे पास में अभी। बोले मैं अच्छी अच्छी समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा और उनके द्वारा मैं लोगों की बहुत सेवा करी, गरीबों की सेवाएं करी, कोई भी मेरे पास मदद मांगने आता था मैं उसकी मदद करता था। हमारा जो इतनी बड़ी कॉलोनी थी, जिसको भी जिसकी जरूरत पड़ती थी मैं पहले में जाके उपस्थित होता था उसकी सेवा करने, उसके दुख दर्द में, उसको हॉस्पिटल ले जाता था, उसका इलाज करवाता था और सारे लोगों की सेवा पे मैं हमेशा रहता था। मैंने सेवा सबकी मैंने सेवाएं की। बोले ठीक है इसके 3 नंबर आपको। तो कितने हो गए? 6 नंबर। अब तो कोई बताइए उसको सुनाने के लिए पुण्य कर्म, सारे जीवन के पुण्य कर्म सुना दिए और 6 नंबर मिले। तो बड़ा हताश हो गया वो तो कि 1000 नंबर मुझे लेना स्वर्ग में जाने के लिए, तो 6 ही नंबर हुए। बड़ा दुखी होकर परेशान होकर जमीन में बैठ गया, हताश हो गई, सिर पकड़ के, हे भगवान अब तो एक तेरा ही सहारा है, तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, एक तेरा ही सहारा है, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। जैसे ही उसने भगवान के लिए कहा तू मेरा है मैं तेरा हूँ एक तेरा ही सहारा है, मेरा जब भगवान के लिए बोला तो देवदूत ने उसको खड़ा किया पकड़ के, वो कहा तुम्हारे 1000 नंबर पूरे हो गए। क्योंकि अब उसने वो लौकिक के लिए संबंधियों के लिए मेरा नहीं कहा उसने, वहां तो उसका मेरा आ रहा था महिमा के रूप में, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, लेकिन अब उसने मेरा तो एक भगवान ही है दूसरा कोई नहीं है। बोले अब आप स्वर्ग में जा सकते हैं सादर पूर्वक। तो कहने का भाव यही है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, हमें मोह चीजों में भी, मोह संबंधियों में भी, अपने आप में भी, जितने प्रकार का अटैचमेंट मोह होता है। देखो प्रेम एक अच्छी चीज है, मोह अच्छा नहीं है। मोह प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम को कहते हैं लव और मोह को कहते हैं अटैचमेंट। शब्द में भी और अर्थ में भी बहुत अंतर है। प्रेम से रहना है, प्रेम से बोलना है, सबसे प्रेम से व्यवहार करना है, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो गुण, ये तो दैवी गुण है। लेकिन हमको मोह किसी में नहीं रखना है, इसलिए हमको नष्टो मोहा बनने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि यही हमारी अंतिम स्थिति है और इसी से हम, इसी अवस्था से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा से ही हम अपने आप को भी, आपको भी और बाप को दोनों को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ओम शांति।